سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ناظرین کے لیے ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے, پروگرام تو لانگ ڈرائیو ہی ہے لیکن عید کے دنوں میں آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو اسپیشل ریکارڈنگ ہے. اور آج کا جو ہمارا سفر ہے وہ گلشن اقبال کراچی سے ٹھٹھا کی طرف ہے. بہت ساری باتیں ہوں گی, بہت کچھ اس میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ عزوجل. اور آج کے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے ساتھ مفتی دعوت اسلامی, مفتی علیہ سنت, مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں. مرحبا کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اب تک کے ایپیسوڈز میں ہم دونوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک نئے مبلغ بھی ہیں, مولانا عبد الواجد مدنی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء اللہ, تو سفر تو کہ تھوڑا طویل ہے تو کوشش ہوگی کہ آپ تک معلومات بھی پہنچیں, ان میں دین کی باتیں بھی ہوں, جنرل نالج بھی ہو اور بہت کچھ. لیکن پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں, بلکہ اس سے بھی پہلے, چونکہ ابھی گھر سے ہم روانہ ہوئے ہیں تو سواری کی جو دعا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ,
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ,
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ,
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
سبحان الذی
سخر لنا
هذا
وما كنا
له مقرنین
وإنا
الى ربنا
لمنقلبون.
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, آپ بھی نیت کر لیجئے کہ جب بھی سواری پر سوار ہوں, سفر پر جائیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. بڑی برکتیں اس دعا کی جو پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھا ہے ایک تعداد ہے جن کی عادت ہوتی ہے, اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کی بڑی ترغیب بھی پائی جاتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی, دعا پڑھ کے سفر شروع کیا اور ایسا لگا کہ حادثہ ہوتے ہوتے بچ گئے. کیا پتا اسی دعا کی برکت تھی, اس نظر رکھنا چاہیے. اور واقعی اس دعا کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ حادثات سے آپ محفوظ رہتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں دعائیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کل ورز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. تو سفر میں بھی درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے, یا اچھی بات کریں یا درود پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, تو انشاءاللہ آپ کا سفر بھی زیادہ مبارک رہے گا. ناظرین, لانگ ڈرائیو ایک کانسیپٹ ہے, پروگرام ہے جس میں ہم کہیں کا سفر اختیار کرتے ہیں اور سفر کے دوران مبلغین کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں. ماشاءاللہ کئی ایپیسوڈس میں مفتی صاحب کا ساتھ رہا, اور اس میں ایک نیت یہ ہے کہ سفر کرنے کا ایک انداز بھی ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل سکتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ کا ہم سفر اچھا ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا سفر کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. ایک ایپیسوڈ اسی ٹاپک پر ہم نے کیا تھا مفتی صاحب کے ساتھ ہی, کہ ہم سفر کیسا ہونا چاہیے, جب آپ سفر پر جائیں تو کن باتوں کا خیال ہونا چاہیے. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یوٹیوب پر جا کر مدنی چینل پر آپ پریویس ایپیسوڈز میں اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹھٹھا ایک چھوٹا سا شہر ہے اور کراچی سے قریب ہے, تاریخ اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور بہت کچھ وہاں پر دیکھنے کو لوگ جاتے ہیں. لیکن ہم کیا دیکھیں گے, وہاں پر کیا کریں گے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کچھ دیر کے بعد ملاحظہ کریں گے. آج کا جو ٹاپک ہے جس پر ہم انشاءاللہ کلام کا آغاز کرتے ہیں, مفتی صاحب سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان ماضی پرست ہے, ماضی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور تاریخ کے بارے میں جاننا بھی چاہتا ہے, اور اسی تجسس کی وجہ سے انسان نے بہت کچھ کیا, بڑے بڑے شہروں کو, زمینوں کو کھود ڈالا, دنیا کا سفر کر لیا. اور ایک بہت بڑا کوشچن کیا جاتا ہے کہ دنیا کی تاریخ کیا ہے, اقوام کی تاریخ کیا ہے, میری تاریخ کیا, وغیرہ وغیرہ. تو ہماری زندگی میں تاریخ کی کیا اہمیت ہے, اس کے بارے میں کچھ اشارہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو آپ نے جو ٹھٹا کا تعارف کروایا ہے اس حوالے سے میں عرض کروں کہ آج تو یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن ایک بہت عرصہ ایسا گزرا ہے کہ یہ اس پورے بر صغیر کے بڑے مشہور شہروں میں سے ایک شہر ہوا کرتا تھا اور یہ باقاعدہ دار السلطنت تھا, یعنی کیپٹل تھا, اور کیپٹل بھی کسی ایک سلطنت کا نہیں بلکہ بہت ساری سلطنتوں کا اور بہت سارے بادشاہوں کا. اس کی ایک بہت بڑی یعنی کہ واضح سی دلیل آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹھٹھا کا جو قبرستان ہے جسے مکلی کا قبرستان کہتے ہیں, یہ ٹھٹھا مکلی یعنی کہ یوں ہے بالکل ساتھ ساتھ, تو یہ جو مکلی کا قبرستان ہے یہ دنیا کے بڑے قبرستانوں میں سے ایک ہے. دنیا کے بڑے قبرستان یعنی دنیا کے اگر آپ پانچ شاید سب سے بڑے قبرستان شمار کریں تو ان میں سے ایک مکلی کا قبرستان, اور اس قبرستان میں تقریباً 500 بادشاہ اور بادشاہوں کی فیملی کے افراد دفن ہیں. تو اب جہاں درجنوں بیسیوں بلکہ اس سے بھی زیادہ بادشاہوں کی قبریں ہیں تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ وہ شہر بادشاہوں کے اعتبار سے, سلطنت کے اعتبار سے کیسی حیثیت رکھتا ہے. چونکہ اتنا بڑا قبرستان ہے تو اب جیسے وہاں پر بادشاہوں کی قبریں اتنی زیادہ ہیں, اسی طرح وہاں پر اولیاء کرام اور علماء کرام کی جو قبریں ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں. تو یہ تھوڑا سا میں نے تعارف اس لیے کروایا کہ ہمارا موضوع تاریخ ہے اور ٹھٹہ جو ہے یہ ہمارے اس خطے کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ اور بہت سی یادیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی جیسے ہم جائیں گے, خیر ہمارے وہاں اندر جانے کا موقع نہیں ملے گا, ورنہ وہاں بادشاہوں کے بڑے بڑے کبے اور بڑے بڑے جو ان کے گنبد ہیں وہ بنے ہوئے اور باقاعدہ موجود ہے کہ یہ فلاں بادشاہ یہ فلاں بادشاہ. تو یہ اتنا تاریخی شہر,
جیسے شاہجہاں بادشاہ ہے وہ پورے مطلب بر صغیر کا بادشاہ تھا تو اس کی خصوصی توجہ اس شہر پہ تھی, تو اس نے یہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کروائی جو آج تک قائم ہے اور شاید اب ٹھٹھا کی پہچان کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور اسے شاہجہاں مسجد کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے بڑے بڑے مشاہیر کا اس شہر میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی یہ شہر بہت آباد اور بڑا نمایاں تھا. جیسے سندھ میں جو سلسلہ نقشبندیہ کے مؤسس کہیں گے ہم, ابو القاسم نقشبندی صاحب, ان کا مزار مبارک یہاں پر ہے. اسی طرح سے مخدوم آدم نقشبندی صاحب ہیں اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں. اور ابھی بھی یعنی چھوٹا شہر تو نہیں, کم و بیش 10 لاکھ کی آبادی تو ابھی بھی ہے اور 8,000 اسکوائر کلومیٹر پہ محیط ہے یہ سارا ایریا.
اچھا ماشاء اللہ, زبردست. اتفاق کی بات ہے کہ مجھے کراچی میں آئے ہوئے کوئی 27-28 سال ہو گئے لیکن میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں.
اچھا یہ شاہجہاں مسجد وہی ہے نا جس میں وہ گنبد ہے کہ وہ محراب کی آواز جو ہے وہ پوری مسجد کے اندر گونجتی ہے, یعنی کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے بنی. لیکن اس کی خصوصیت یہ تھی کہ امام کی آواز جیسے پہلی صف کو سنائی دیتی تھی ایسے ہی آخری صف کو سنائی دیتی, بغیر لاؤڈ اسپیکر کے سسٹم کے, جب اس کا ایجاد بھی نہیں ہوا تھا, اس کا وجود ہی نہیں تھا. تو یہ اس زمانے کے انجینئروں کا ماشاءاللہ یہ کمال تھا کہ اس طرح کا انہوں نے بنایا.
کیا بات ہے, کیا بات ہے. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم نے حسن اسکوائر کو کراس کیا ہے اور ابھی کراچی کا ایک مشہور روڈ ہے جو ایئرپورٹ روڈ کہلاتا ہے, کراچی کینٹ سے ایئرپورٹ کے درمیان تو مشہور روڈ ہے, اس پر ہم سفر کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ صبح ٹھٹھا رواں دواں ہوں گے. جی مفتی صاحب, آپ کچھ تاریخ کے اعتبار سے شروع.
تاریخ کا جو آپ نے کہا نا کہ تاریخ یعنی کہ کیا چیز ہے اور اس کا جو ہے اس کے یعنی کہ جاننے کے فوائد کیا ہیں یا اس میں جو بھی اس کے متعلقات ہوتے ہیں, تو دیکھیں تاریخ نام تو سیدھا سیدھا ہے کہ ماضی کے واقعات کا نام تاریخ ہے. جو ہمارا ماضی گزر چکا ہوتا ہے وہ ہماری تاریخ بن جاتا ہے. اب وہ فرد ہے تو وہ فرد کی تاریخ بن جائے گا, وہ قوم ہے تو وہ قوم کی تاریخ بن جائے گی, وہ معاشرہ ہے تو وہ معاشرے کی تاریخ بن جائے گی, وہ کلچر ہے تو اس کلچر کی ایک تاریخ ہوگی, کس طرح ڈیولپ ہوا, کس طرح وجود میں آیا. تو تاریخ بنیادی طور پہ یہ ماضی کی یادوں کا نام ہے, और माजी के वाकयात का नाम। और जब इसे बाकायदा कंपाइल कर लिया जाता है तो फिर ये एक बाकायदा वो बन जाता है, यानी कि एक इल्म बन जाता है। तो तारीख के हवाले से ये है कि तारीख के अंदर जो दिलचस्पी है इंसान की, या जो इसके पढ़ने के पहले इसके पढ़ने के फायदे के अतबार से हम देख लेते हैं। देखिए, तारीख का इल्म ये हमेशा से ये कौमों के पसंदीदा उलूम में शामिल रहा है, और इसकी इब्तिदा उस वक्त से है कि जब आदम अली सलातो सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। क्योंकि जब तारीख का माना है माजी के वाकयात, तो आदम अली सलातो सलाम जैसे तशरीफ लाए तो उनके जिंदगी का एक सिलसिला शुरू हो गया। इंसान वजूद में आया कि आदम अली सलातो सलाम पहले इंसान है, तो अब इंसानों की तारीख शुरू हो गई। यानी इससे पहले को आप देखेंगे तो इसी रूए जमीन के ऊपर जिन्नात की तारीख है। आदम अली सलातो सलाम तशरीफ लाए तो अब इंसानों की तारीख शुरू हो गई। फिर तारीख इंसानी के वाकयात को हम शुमार करना शुरू कर देते हैं कि आदम अली सलातो सलाम फलां जगह उतरे थे, वहां से फलां जगह पे आए, हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा फलां जगह उतरी थी, वो वहां से यहाँ तशरीफ लाई। अच्छा, फिर उनके यहाँ औलाद हुई, औलाद का सिलसिला यूं बढ़ा। अच्छा, फिर उसके अंदर हाबील काबील का वाकया। तो अब ये क्या है? ये तारीख है। तो अब अगर ये तारीख है और यकीनन तारीख है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तारीख कब से शुरू हुई? कि आदम अली सलातो सलाम है और तारीख शुरू हो गई। तो दुनिया के अंदर जिन उलूम की तारीख है उनमें सबसे पुराने उलूम में से इल्म तारीख। अच्छा हाँ, ये है कि मुरतब करने का सिलसिला बाद में शुरू हुआ, कि वो एक बहुत बाद के अंदर इसका सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, फिर तारीख के हवाले से एक और आपको मैं दिलचस्प बात अर्ज करता चलूँ
जी
कि इल्मे तारीख के वाकयात का लिखना और उसे जमा करना, उसे लोगों तक पहुंचाना, ये वैसे तो काफी पुराना इल्म है और इस पर कई, यानी कि जमानाए कबले मसीह में भी किताबें इस मौजू पर लिखी गई। लेकिन हैरत अंगेज बात ये है कि इल्मे तारीख को जो मर्तबाए कमाल तक पहुंचाया वो मुसलमानों ने पहुंचाया।
अच्छा, बॉसों के लिए नई बात होगी।
ये हैरत अंगेज बात है और ये वाकयातन नई बात है, और ये हमारे फखर की बात है
बेशक
कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने इल्मे तारीख को मर्तबाए कमाल तक पहुंचाया। वैसे तो आसमानी किताबें भी तारीख पर मुश्तमिल हैं, लेकिन चूंकि वो तो खुदा की जो है वो किताबें हैं, खुदा का कलाम है, तो हम उससे हटकर जो बात करते
यानी
हैं
मौजू के एतबार से जो
मौजू के एतबार
प्रॉपर
से, जो फन्ने तारीख जिसे कहा जाता है ना, फन्ने तारीख जो अपने उरूज को पहुंचा। अच्छा, उसकी बुनियाद कहाँ से बनी? उसकी बुनियाद बनी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने से, आपके हालातों वाकयात और आपकी जिंदगी को बयान करने से। उससे इल्मे हदीस वजूद में आया,
सही
इल्मे उसूले हदीस वजूद में आया।
सही
उसूले हदीस में अस्मा और रिजाल का इल्म, रावियों का इल्म, ये वजूद में आया। तो अब जब ये वाला इल्म बना ना, कि मिसाल के तौर पे इस हदीस को रिवायत किया इमाम मालिक ने हजरत नाफे से, हजरत नाफे ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से। तो अब मुहद्दिसीन ने क्या किया, सहाबाई किराम का मामला ये था कि वो सारे सिका
सही
मोतबर मुस्तनद, उनकी किसी बात पर ये कलाम नहीं है कि माद अल्लाह उन्होंने गलत बयानी की।
सही
लेकिन सहाबा से नीचे की जो शख्सियात है ना, उनको परखना कि इनकी जिंदगी कैसी थी, इनका किरदार कैसा था, इनकी सुबह शाम कैसी थी, इनका सच का बयान कैसा था, इनका कलाम कैसा था। तो अब मुहद्दिसीन ने क्या किया कि हजरत नाफे को जांचा उन्होंने कि जनाब ये जो नाफे हैं तो ये कैसे हैं, मोतबर हैं या नहीं। तो अब उन्होंने तारीख वजूद में लाके, यानी एक फर्द एक रावी की हालाते जिंदगी की छानबीन की और उसे मुंजबित कर लिया कि ये शख्सियत ऐसी है। अच्छा, उसके बाद अगले रावी हैं हजरत इमाम मालिक। अब इमाम मालिक ये किस पाए के आदमी हैं, ये कैसे आलिम हैं, और इनकी रिवायत कितनी मोतबर है, इनका हाफिजा कैसा है। ये मैंने एक रिवायत की मिसाल दी। सहाबाए किराम से जितने ताबेई ने रिवायत किया, जितने ताबेई ने रिवायत किया, हर हर ताबेई के हालाते जिंदगी लिखे जाना शुरू हो गए और उन्हें याद किया जाना शुरू हो गया, और ये तारीख चलना शुरू हो। अब सहाबाए किराम जो हैं, खुद सहाबाए किराम का मामला ये है कि कि सहाबा किराम पर जो किताबें लिखी गई, अब वो बेसिकली उसे तारीख सहाबा कहेंगे आप, ठीक है ना, उसे तारीख सहाबा कहेंगे। जो तारीख सहाबा है उसमें 7,000 सहाबा किराम के अहवाल है,
वाह, 7,000,
7,000 यानी तादाद 1,24,000 के करीब है।
क्या बात।
उनमें 7,000 वो हैं कि जिनके नाम बाकायदा किताबों में मौजूद हैं, और इस पर मुसलमानों की बड़ी बड़ी अजीम किताबें हैं, है ना, अल इस्तियाब फी मारिफत असहाब, उसूदुल गाबा फी मारिफत सहाबा, और इसी तरह की चंद एक और किताबें हैं। तो अब ये देखिए, ये एक तारीख वजूद में आ गई। अच्छा, फिर उसके साथ दूसरा क्या हुआ कि अब ये रावियों की तारीख के साथ साथ अब दीगर भी तारीखें शुरू हो गई, अब खुलफा की तारीखें शुरू हो गई। तो मुसलमानों ने जो रावियों की जांच परख करना, उसका मोतबर गैर मोतबर होना, मुस्तनद गैर मुस्तनद होना, जो है इस सारे इल्म को यूं कह लें कि वाकेतन पाया तकमील तक मुसलमानों ने पहुंचाया। और उसके बाद जो फिर तारीख की फिलॉसफी और तारीख के जो उसूल तो पहले से बनते आ रहे थे, अब उसके बाद कहा जाता है कि एक है जमे तारीख के तारीखी वाकयात को जमा कर दिया गया, एक है उनको परखने के तरीके, परखने के भी असमा और रिजाल और उसूल हदीस के जरिए हो गए। तीसरे नंबर पे क्या आया, तीसरे नंबर पे आया कि अब इनके ऊपर तबसरा तजजिया करना, इनका बैकग्राउंड फोरग्राउंड उसको चेक करना। इसके लिए भी जो सबसे पहले मुस्तनद मोतबर और बड़ी आला दर्जे की किताब लिखी गई वो भी मुसलमानों की थी, जिसका नाम था मुकदमा इब्ने खुलदून। और ये मुकदमा इब्ने खुलदून वो किताब थी कि जो कई सदियों तक मगरिब की यूनिवर्सिटियों के अंदर सबसे आला दर्जे की किताब के तौर पे उनके निसाब के अंदर शामिल रही, ये मुसलमानों की किताब थी। और आज भी इस किताब को पढ़े बगैर इल्मे तारीख वालों का गुजारा नहीं, खा वो मशरिक के तारीख दान हो, वो मगरिब के तारीख दान हो, वो एशिया अफ्रीका के हों, वो यूरोप ऑस्ट्रेलिया के हों, वो इस किताब के उसूलों को अपने पेशे नजर रखेंगे। फिर बाद में जब ये सारा एक उलूम के अंदर यूं कह ले भौचाल आया और उसके अंदर बड़ी तेजी से तरक्कियां हुई, तो फिर अंग्रेजों ने इसके ऊपर बड़ा काम किया। लेकिन अंग्रेजों का काम भी अगर कोई पढ़ता है और साथ में मुसलमानों की तारीख को देखता है, तो वो ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि इस इल्म में अंग्रेजों ने मुसलमानों से इस्तिफादा किया। मुसलमानों से इस्तिफादा करना निकाल दें तो इनके काम की कोई बुनियादी बाकी नहीं रहती। तो ये इल्म तारीख वो है। तो अब ये जो इल्म तारीख है, इसको जो पढ़ा जाता है, पढ़ने के पीछे बहुत सारे जो है वो असबाब होते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी चीज जिसका ताल्लुक आम फर्द के साथ भी है, जिसका ताल्लुक कौम के साथ भी है, वो है अपनी शनाख्त। यानी इंसान के लिए बेसिकली अपनी जात जो है ना, ये बड़ी प्यारी होती है।
ऐसा ही,
और वैसे भी हकीकत यही है कि इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जात से होती है, जो उमूमी एतबार से है। यानी कि हमारे लिए एक है हुक्म शरीयत है कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपनी जान से बढ़ के मोहब्बत होनी चाहिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को होती है। लेकिन जो हम आम मादी एतबार से चीजें देखते हैं, तो उसमें इंसान के लिए सबसे ज्यादा महबूब शय उसकी अपनी जात होती है। अब अपनी जात और उसके मुतालिकात, अपनी जात के मुतालिकात में अपनी शनाख्त भी,
ऐसे ही
कि भाई मेरी पहचान है क्या, मेरा ताल्लुक किस कुंबे से है, किस कबीले से है, किस शहर से है, किस मुल्क से है, किस खित्ते से है, किस कल्चर से है, तो ये मुझे पसंद है, ये मुझे महबूब होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर पे आपका एक अरसा साउथ अफ्रीका में गुजरा,
ऐसे ही।
ठीक है। अच्छा, अब आप साउथ अफ्रीका में थे, वहां पर भी अगर आपको कहीं कोई बंदा मिले और वो बोले जना मैं पाकिस्तानी हूँ, तो आप यकदम एक अपनाइत फील करते ना उसके लिए कि अच्छा यार वो पाकिस्तान से हो आप। तो अब आप उसके साथ, अच्छा अब उसके साथ अगर वो आपको ये बता दे कि जना मैं भी कराची से हूँ, तो चूंकि आप कराची में रहते, तो अब आपको और ज्यादा उससे वो होगा कि यार ये बंदा कराची का है भाई। ठीक है। अच्छा, अगर आपको अपने किसी पैदाइशी इलाके का कोई बंदा मिल जाए और वो बता दे कि जना वो जो फलां स्कूल है ना, उसके पीछे हम रहते थे और आप स्कूल के आगे वाली साइड पे रहते थे, तो आप बोलेंगे भाई साहब आए चाय पीते हैं। ये क्या है, ये है कि इंसान को अपनी शनाख्त से प्यार होता है और वो उसके अंदर अपनाइत फील करता है। तो तारीख क्यों जानी जाती है? अब मैं इस्लाम की तारीख पढ़ता हूं, उसमें और भी नियतें होती हैं,
सही,
लेकिन एक उसमें ये भी होता है कि यार ये मेरी तारीख है,
वाह,
ये मेरे दीन की तारीख है।
क्या बात।
मैं मुसलमानों की तारीख पढ़ता हूं, तो उसके अंदर मेरे साथ ये होता है कि ये मेरे जो है ना वो हम मजहब लोगों की तारीख है। अच्छा, मैं पाकिस्तान की तारीख पढ़ता हूं, तो मुझे होगा कि यार ये मेरे वतन की तारीख है ये। अच्छा, मैं अपने शहर की तारीख पढ़ता हूँ तो मुझे होगा ये मेरे शहर की तारीख है। अच्छा, मैं अपने कल्चर की तारीख पढ़ता हूँ, अगर मैं पंजाबी हूँ और मैं पंजाबी कल्चर की तारीख पढ़ता हूँ तो मुझे होगा यार ये मेरे पंजाबी कल्चर की तारीख है। अच्छा, अगर मैं सिंधी हूँ और मैं सिंधी तारीख पढ़ता हूँ तो मुझे ये होगा कि यार ये मैं चूंकि मैं सिंधी हूँ लिहाजा ये मेरे सिंधी की तारीख है। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ तो अब मुझे हो सकता है कि जनाब दिल्ली और मुंबई और उत्तर प्रदेश यूपी मुझे इन इन जगहों की तारीख ज्यादा पसंद हो। अच्छा, इसी तरह बरादरियों का हिसाब होता है। अब बरादरियों के अंदर मिसाल के तौर पर एक बंदा चौहान है तो अब उसके सामने अगर एक किताब ला के रख दे ना कि जनाब तारीख है चौहान, तो वो बड़े शौक से
अट्रैक्ट
पढ़ेगा ना कि
होगा।
भाई ये तो अपनी है ना ये तो, ठीक है ना। अच्छा, आवान की आप ला के रख दे तो वो आवान को बड़े शौक से पढ़ेगा, ये तो जनाब हम भी आवान है, ये आवान वाले पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये है इंसान का तारीख के साथ एक जाती ताल्लुक। अच्छा, फिर अगर वो कोई बड़ों की औलाद में से है, ये तो ना कि बरादरी कुंबा कबीला है, एक है बड़ों की औलाद में से है। बड़ों की औलाद में से ये है कि मिसाल के तौर पे किसी को ये पता चले कि जनाब ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से,
वाह
तो अब उसे शौक होगा कि भाई मैं जरा अपने आबाओ अजदाद को तो पढ़ू।
सही
अच्छा,
जी,
कोई मुगलिया खानदान का फर्द है तो उसको मुगलिया खानदान की तारीख इसलिए भी ज्यादा पसंद होगी कि वो अपने आबाओ अजदाद को देखना चाहता। अच्छा, को किसी बड़े शायर की औलाद है तो उसको इसलिए पसंद होगा कि जरा मैं थोड़ा सा पढ़ू तो सही, हमारे वालिद ग्रामी और हमारे परदादा साहब जो है ना वो किस शान के मालिक थे, वो उसको उस एतबार से पढ़ना शुरू कर देगा। तो तारीख के साथ जो पहली दिलचस्पी पैदा होती है और या जो उसको पहले पढ़ने का मकसद आदमी के सामने आता है, वो उसका खुद अपनी शनाख्त को जानना और अपनी शनाख्त का इजहार और उसके मुतालिक मालूमात होती है। अच्छा, दूसरी वजह ये भी होती है तारीख के साथ कि इंसान तारीख इसलिए भी पढ़ता है कि उसे वाकयात और हकायक के साथ दिलचस्पी होती है। इंसान की फितरत है कि वो चाहता है कि उसकी मालूमात में इजाफा हो, उसे वो चीजें पता चले जो उसे मालूम नहीं है। तारीख चूंकि उसके सामने एक बहुत वसी दुनिया ला के रख देती है, लिहाजा इंसान उन मालूमात में दिलचस्पी लेते हुए उनको पढ़ता है। अच्छा, तीसरी बात यह भी होती है कि इंसान जो है महदूदियत से ज्यादा लामहदूदियत को पसंद करता है। जो जो दुनिया हमारे सामने है ना, ये महदूद है, क्योंकि मैं एक गली में रहता हूँ, एक घर में रहता हूँ, मेरा घर महदूद है, मेरा मोहल्ला महदूद है और मेरी ऑफिस की दुनिया महदूद है। बहुत तीर मारूंगा तो मैं अपने शहर में निकल जाऊंगा, इससे कुछ ज्यादा करूंगा तो चले मैं दो चार और शहरों की सैर कर लूंगा, लेकिन ये सब चीजें बड़ी महदूद। लेकिन तारीख क्या है, तारीख आपके सामने अब से लेके हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तक के जमाने को खोल देती
है।
आपके सामने आपके शहर से हटकर आपके मुल्क के हर हर शहर को खोल देती, आपके मुल्क से बढ़ के आपके सामने आपके पूरे बर्रे आजम को खोल देती, आपके बर्रे आजम से आगे आपके सामने पूरी दुनिया खोल देती। अच्छा, फिर आपकी फील्ड की जितनी मालूमात आपको हैं उससे हजारों गुना ज्यादा मालूमात का एक मैदान आपके सामने खुल जाता है। अच्छा, फिर जो है जो जिस इल्म के अंदर आप हैं उस इल्म से, उस इल्म के अलावा और न जाने कितने उलूम में जिनकी मालूमात मिलती, तो ये जो जस्तजू है, ये जो तलब है और ये जो इम्प्रूवमेंट है और ये जो वसअत की तरफ सफर है और ये जो लामहदूदियत की तरफ जाना है, ये एक इंसान का शौक है।
सही,
तो वो उसके लिए जना फिर वो ज्यादा से ज्यादा जना वो पढ़ता है सुनता है।
क्या बात है, माशाल्लाह।
अच्छा, फिर जो है इस दिलचस्पी से हटकर तारीख का एक बहुत बड़ा मकसद माजी के वाकया से सबक लेना भी होता है, क्योंकि माजी इंसानी तजरबात का एक वसी समंदर है जिससे आपको हजारों चीजें सीखने को मिलती हैं, उरूज के असबाब और जवाल की वजूहात, ये आपको सब जो है ना ये मिल जाती हैं। तो जब आप माजी का मुताला करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको, आप अफराद को देखते हैं तो अफराद के परवान चढ़ने और जवाल का शिकार होने, कौमों के उरूज पाने और उनका जवाल का शिकार होने का पता भी चलता है और उसके असबाब का भी पता चलता है। ये असबाब एक तरफ तो आपको माजी के हवाले से मालूमात देते हैं, दूसरी तरफ आपके मुस्तकबिल की प्लानिंग का जरिया बनते हैं।
ऐसे ही,
और जो शख्स और जो कौम अपने माजी को याद रखती है और उससे सबक लेती है, उनके आइंदा जवाल पजीर होने के असबाब कम हो जाते हैं।
सही
वैसे अगरचे एक वो जुमला मशहूर है, वो बाद एतबार से सही भी है, बाद एतबार से हर एतबार से नहीं। तारीख का सबक ये है कि तारीख से सबक कोई नहीं लेता,
अच्छा वाह
क्योंकि बंदा जब खुद उन हालात में पहुंचता है फिर वो वही हरकतें करता है
जो पहले
जो
वाले
पहले
कर
वालों ने
चुके।
कर चुके।
सही
यानी जैसे एक आ, आ, उसूल क्या है कि जब इक्तदार और ताकत हाथ में आती है,
जी
ठीक है, तो गर्दन में सरिया और तकब्बुर और जुल्म ये उस फर्द या उस साहिब इक्तदार के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब एक बंदा माजी के बड़े बड़े पढ़ता है ना, नमरूद को पढ़ा, फिरौन को पढ़ा, हामान को पढ़ा, या और जो भी दुनिया की तारीख है उसमें पढ़ा, तो जो वो पढ़ता है वो कहता है यार मैं इन चीजों से बचूंगा।
ऐसा ही
लेकिन जब वो खुद उसी मनसब और उसी जगह पे आता है तो वो सारे के सारे वही काम करता है जो पहले वाले ने किए होते।
कहते मजा तो इसी में है।
तो अब वो जब सारे काम वही करता है तो वो उसी अंजाम से दो चार भी होता है जिस अंजाम से पहले वाला दो चार होता है।
लो
तो अब क्या है, तो ये वो है कि माजी का सबक ये है कि माजी से सबक कोई नहीं लेता। तो ऑन सर्टन लेवल ये बात जो है वो दुरुस्त है, बाकी माजी से सबक लेने वाले भी हैं और उससे बहुत अच्छा जो है ना समझने वाले भी।
सही,
इसी में असद भाई कुछ मैं भी ऐड कर दूं कि चूंकि तारीख जो है वो एक माजी की बात है, तो जो अपने माजी से होशियार होता है तो वो अपने हाल पे नजर रखता है और अपने हाल को संवारने की कोशिश करता है, और जब हाल संवर जाता है तो फिर फ्यूचर भी बेहतर हो जाता है। अच्छा, जो लोग अपनी तारीख से बाखबर होते हैं ना असद भाई, वो लोग या वो कौमें अपनी जिंदगी में डिसीजन मेकिंग में वो दूसरों से मुमताज हो जाते हैं, और वो फैसले भी कर जाते हैं कि जो माजी से अगर वो आगाह ना होते तो वो फैसले ना करते। अच्छा, इसकी एक बेहतरीन मिसाल खुद पाकिस्तान का कयाम है कि हम अपने माजी से आगाह थे कि दीन की वजह से, इस्लाम की वजह से हम एक मुख्तलिफ कौम हैं, और एक मुख्तलिफ कौम होने की वजह से हमारा ये एक लिजिटिमेट राइट है कि हमारे पास एक अलग से मुल्क हो जिसमें हम अपने अकीदे, अपने मजहब और अपने तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। तो व्हेन वन इज इन्फॉर्म्ड अबाउट, व्हेन वन नोज हिज हिस्ट्री, सो ही इज एबल टू मेक बेटर डिसीजंस। और फिर मूसा ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है आज हमारे दौर, हमारे इस वक्त में, दौर में, पीपल दे हैव बिकम कंफ्यूज्ड कि हम क्या हैं, और वो कन्फ्यूजन हर हर लेवल पर है। अकीदे के लेवल पे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, अपने कल्चर के लेवल पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन अगर कोई तारीख का मुताला रखता है तो उसको ये बात पता चल जाती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस कौम से मेरा ताल्लुक है और मैं किस अकीदे से बिलोंग करता हूँ। तो फिर ये चीज़ जो है उसकी ज़िंदगी में आइडेंटिटी क्राइसिस को नहीं आने देती और वो अपनी कौमी शनाख्त के साथ जुड़ा रहता है।
जैसे आम तौर पे एक हमारी प्रैक्टिस है कि खानदानी मामलात के अंदर जो खानदान के बूढ़े होते हैं उनसे मशवरा लिया जाता है और उसे ज्यादा मोतबर शुमार किया जाता है।
ऐसा ही
वजह यह है कि खानदान की जितनी तारीफ उनके सामने होती है ना
सही है
वो दूसरों के सामने नहीं होती। जब कहीं आपस में रिश्ते करने हैं तो उनके सामने एक पूरी तारीख होती है कि ऐसी ऐसी जगह रिश्ते करने में, इस खानदान में रिश्ते करने में, ऐसे लोगों से रिश्ते करने में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। अच्छा, इसी तरह और जिंदगी के बहुत से फैसले, खा अपना घर ही चेंज करना है या अपनी नौकरी चेंज करनी है या अपना बिजनेस चेंज करना है, तो जो खानदान के बूढ़े होते हैं चूंकि उनके सामने माजी की तारीख होती,
ऐसा ही
खानदानी तारीख होती, अपने अफराद के माइंडसेट की तारीख होती है, जिस तरफ मूव करना है उन लोगों के तर्ज जिंदगी की तारीख होती है, तो वो उसके मुताबिक जो है वो मशवरा देते हैं। और इसी को वो कहा जाता है ना, भाई मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई माजी के तजरिबात ने मुझे सिखाया हुआ है और मैं जो जवाब देता हूँ मैं उन तजरिबात की रोशनी में जवाब देता हूँ। तो ये भी बेसिकली माजी ही का एक हिस्सा होता है जिसको यूं लेके चला जाता है।
मदनी चैनल देखते रहिए और मुख्तलिफ मौके पर, मुख्तलिफ मौजूआत पर सिलसिले देखिए अपने इल्म को बढ़ाइए, अमल का जज्बा बेदार कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
नाज़रीन, हमारा सफ़र अभी जारी है और गुफ्तगू का सिलसिला भी मज़ीद रहेगा, लेकिन ठट्टा पहुँचने के बाद हमने कुछ मज़ारात औलिया पर हाज़िरी देने की सआदत हासिल की। इस एपिसोड में उन मज़ारात में से एक के मनाजिर आपको दिखाए जाते हैं। किसी वली के मज़ार पर हाज़िरी बड़ी सआदत की बात है। कुछ मकामी इस्लामी भाई, कुछ जिम्मेदारान वहाँ पर जमा हो चुके थे, उनसे भी मुलाकात का सिलसिला हुआ, मज़ार पर हाज़िरी दी, सलाम अर्ज़ किया, अल्लाह पाक की बारगाह में इनके वसीले से दुआएं मांगी, फातिहा खानी की, और कुछ देर वहाँ पर गुजारने के बाद आगे का सफर जारी हुआ।
अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता है मकामाते मुकद्दसा।
सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने।